आज है दिसंबर महीने की 4 तारीख दिन मंगलवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। फ्रांस में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान एक और महिला की मौत। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पोलैंड सम्मेलन से क्या हासिल हो सकता है।
2015 को जो पेरिस अग्रीमेंट हुआ उसे लागू किस तरह से करना है ये तय नहीं हुआ। उसी अग्रीमेंट को लागू करने के लिए जो रूल बुक बनानी है इस बैठक में तय करना है।
क्या हुआ जब एक मंदिर में मुसलमानों ने नमाज अदा की।
दोपहर का टाइम था वो कुछ बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था, दोपहर की नमाज का टाइम हो गया, फिर उन्होंने कहा कि हम नमाज अदा करेंगे।
सुनिए बीबीसी के खजाने से शशि कपूर का एक खास साक्षात्कार।
ये हो सकता है कि हम लोग ओल्ड फैशन है, हमारे यहाँ सेंसर है, हमारे यहाँ सेक्स वेक्स नहीं है, तो सेक्स की बजाय हमारे यहाँ।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। फ्रांस में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे इन प्रदर्शनों में जहां सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, वहीं कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर है। एक ओर जहां प्रदर्शनकारी पेट्रोल डीजल पर बढ़े टैक्स से नाराज हैं, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला बताया है। अमरीका के 41वें राष्ट्रपति जॉर्ज एच वॉकर बुश का पार्थिव शरीर वॉशिंगटन लाया गया है। यहां उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। इस विदाई समारोह में उनके परिवार के साथ साथ कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वे 94 साल के थे और पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित थे। 1980 के दशक में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के प्रशासन के दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति की भूमिका निभाई। बाद में वे 1989 से 1993 तक देश के राष्ट्रपति रहे। अफगानिस्तान के एक शीर्ष खेल अधिकारी ने पहली बार देश की महिला खिलाड़ियों के साथ यौन दुर्व्यवहार होने की बात स्वीकार की है। इस अधिकारी ने माना है कि देश की महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ियों और दूसरे खेलों में शामिल महिला खिलाड़ियों के साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ है। हालांकि उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि इस समस्या को जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा। नेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रमुख हफीजुल्ला रहीमी ने महिला खिलाड़ियों के साथ हो रहे गलत व्यवहार को स्वीकारा है, जबकि देश की फुटबॉल फेडरेशन लगातार इन आरोपों को गलत बताती आ रही है। राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान ने फेडरेशन पर महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ यौन दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए थे। खालिदा पोपल ने बीबीसी को बताया कि सार्वजनिक तौर पर ये कह पाना काफी मुश्किल था। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में फुटबॉल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने अपनी आवाज बुलंद की है। पहली बार किसी ने उनसे ये कहा है कि बस अब बहुत हुआ, हम तुम्हें और ये नहीं करने देंगे। ये थे खालिदा पोपल के शब्द। खेल जगत की ही एक और खबर। नॉर्वे की फुटबॉल खिलाड़ी अदा हैगरबर्ग को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर चुना गया है। उन्हें बैलन डी और अवार्ड से नवाजा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब महिला खिलाड़ियों के लिए अलग से ये प्रतियोगिता रखी गई। पुरुष वर्ग में लुका मॉड्रिक को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए बैलन डी और अवार्ड दिया गया है। 10 साल में ये पहला मौका है जब ये अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी को न मिलकर किसी अन्य खिलाड़ी को मिला है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने हाउस ऑफ कॉमन्स के सांसदों को अपने हालिया G20 समिट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पत्रकार खाशोजी की हत्या के मामले पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि अर्जेंटीना में हुए सम्मेलन के दौरान उन्होंने खाशोजी की हत्या और यमन संघर्ष का मसला भी उठाया। सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिली। मैंने जोर देकर उन्हें कहा कि खाशोजी की हत्या की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। इसके अलावा मैंने यमन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भी गंभीरता से बात की। सऊदी के साथ हमारे संबंध बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन मुद्दों को ही ना उठाएं। मैक्सिको के नव निर्वाचित राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर ने अपने काम के पहले दिन 4 साल पहले 43 छात्रों के गायब होने की जांच करने के आदेश दिए हैं। जब ये घटना हुई थी तो लोगों ने हफ्तों तक प्रदर्शन किए थे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत संदीप सोनी के साथ। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं इस समय लाइव। फ्रांस में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में बीते दो हफ्तों से प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी पथराव और आगजनी करते हैं और पुलिस आंसू गैस के गोले दागकर इसका जवाब देती है। इस टकराव में प्रदर्शनकारियों के अलावा ऐसे लोग भी घायल होकर दम तोड़ रहे हैं जिनका इन प्रदर्शनों से कोई लेना देना नहीं है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए भूमिका राय से।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में फ्रांस में हो रहे प्रदर्शन अब हिंसक हो उठे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे इन प्रदर्शनों में एक ओर जहां सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, वहीं मार्सेल शहर में 80 वर्षीय एक महिला की मौत की खबर है। शनिवार को प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस का एक कनस्तर खिड़की से जा टकराया, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। जिस समय ये हादसा हुआ, महिला अपने अपार्टमेंट की खिड़की बंद कर रही थी और तभी धमाका हो गया। महिला को अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई। फ्रांस में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में बढ़ोतरी से आम लोगों में काफी नाराजगी है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन में शामिल सोनिया नाम की एक महिला ने कहा, बढ़े हुए टैक्स के कारण हमारा सारा काम ही रुक जाएगा, इससे तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। दो हफ्ते से चल रहे इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस के गृह मंत्री का कहना है कि रविवार को हुए इन प्रदर्शनों में करीब 136,000 लोगों ने भाग लिया। इस अभियान को येलो वेस्ट नाम दिया गया है और इसे आम लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं नेशनल फ्रंट की नेता मरीन लापेन ने इन प्रदर्शनों के संदर्भ में कहा, मैंने फ्रांस के प्रधानमंत्री से कहा है कि इस रणनीति के गंभीर परिणाम हो सकते हैं और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहेंगे। वहीं पेरिस के मेयर एन हिडाल्गो ने मीडिया को बताया कि शनिवार को हुए प्रदर्शन की वजह से लगभग 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायर ने कहा कि सरकार सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए प्रतिबद्ध है। काम के लिए भुगतान तो करना होगा, हमें अपने सार्वजनिक खर्चों में कटौती करनी होगी और ऐसा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वहीं सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि अशांति को काबू करने के लिए आपातकाल भी लगाया जा सकता है। फ्रांस में डीजल कारों में इस्तेमाल होने वाला सबसे प्रमुख ईंधन है। पिछले 12 महीनों में डीजल की कीमत में 23% की बढ़ोतरी हुई है। मैक्रो सरकार ने इस साल प्रति लीटर डीजल पर 7.6% हाइड्रोकार्बन टैक्स लगा दिया था।
रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय। धरती के लगातार बढ़ते तापमान को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए पोलैंड के कटोविस शहर में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे साल 2015 में हुए पेरिस समझौते की दूसरी कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन कितना महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन और इससे क्या हासिल हो सकता है, जानने के लिए हमारे सहयोगी नवीन नेगी ने बीबीसी के पर्यावरण मामलों के संवाददाता नवीन खड़का से बात की।
देखिए, आपको याद होगा कि सन 2015 को जो पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, उसकी एक लक्ष्य है कि जो पृथ्वी की जो तापक्रम जो है, वो जो औद्योगिक युग शुरू हुआ तब से अगर तुलना करें तो 2 डिग्री पार नहीं करनी चाहिए। अगर आप कंपेयर करें तो ये लक्ष्य था पेरिस अग्रीमेंट का, और हो सके तो 1.5 में रख सकें। तो उसके लिए कार्बन उत्सर्जन में जो कटौती करनी है, ये सब करना है। लेकिन समस्या ये है कि जो अग्रीमेंट तो हुआ तब, लेकिन उसे किस तरह से क्रियान्वयन करना है, उसे लागू किस तरह से करना है, ये तय नहीं हुआ। तो उसी अग्रीमेंट को लागू करने के लिए जो रूल बुक बनानी है, तो वो रूल बुक इस बैठक में तय करना है, इसे फाइनलाइज करना है।
यानी कि एक तरह से कहें तो पेरिस समझौते के बाद का ये अगला कदम है। अमेरिका ने पेरिस समझौते से अपने आप को पीछे कर लिया था। इस बैठक में कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं, कितने प्रतिनिधि वहां पर आए हुए हैं?
ये जो जितने सारे तकरीबन 200 देश जो हैं जिन्होंने साइन किया था, वो सब के सब आए हुए हैं। अमेरिका भी आया हुआ है। तो जो आपने अमेरिका का बात उठाया कि ये जो अमेरिका की जो डिसीजन है उससे निकलना, वो निकलना तो उसने घोषणा तो किया है, लेकिन उसे कार्यान्वयन होने के लिए अभी 2 वर्ष बाकी है, 2 साल बाकी। तो तब तक के लिए ये लोग जो अमेरिकन नेगोशिएटर्स हैं, उनकी अधिकारियां हैं, वो वहां होंगे। देखना यह है कि उनकी उपस्थिति के कारण ये जो नेगोशिएशंस, ये बैठक जो होता है, ये इसमें कितना ये कितना जटिल बनता है, उसमें ये लोग ब्लॉकेट खड़ा करेंगे या फिर कुछ हेल्प करेंगे, प्रोग्रेस में जो है इन्हें सहयोग मिलता है या नहीं, देखना ये है।
क्या हुआ है अभी तक शुरुआती क्षणों में, क्या कुछ बातें रखी गई हैं अभी तक?
आज का हाईलाइट जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने हुए ब्रॉडकास्टर जो बीबीसी से भी आबद्ध हैं, सर डेविड एटनबरो, तो उन्होंने जिस तरह से एक एक, एक स्पीच दिया वो काफी इंटरेस्टिंग हुआ है, क्योंकि उसमें लोग क्या कहते हैं, आम लोग क्या कहते हैं, दुनिया भर के लोग क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, उन्होंने उसमें ये बात किया, ये उठाया।
जिस तरीके से G20 सम्मेलन में भी जलवायु परिवर्तन के ऊपर बातें रखी गई, उस पर चिंता जाहिर की गई, तो भारत किस तरीके से इस बैठक में हिस्सा ले रहा है, अपनी भागीदारी शामिल कर रहा है?
जैसे कि आपने कहा कि घोषणा कर चुका है अमेरिका कि अब वो इस संधि में नहीं रहेगा, तो इसी से ये भी कहा गया है कि चीन और भारत जैसे उदयमान शक्ति, उदयमान अर्थतंत्र है, अब उनका ये भी मानना होगा कि अगर अमेरिका निकलता है तो सिर्फ हमें ही ज्यादा कटौती करना पड़ेगा। ये किस तरह से होगा, ये तो क्लाइमेट जस्टिस, ये जो न्याय संगत बात नहीं हुआ। तो ये जो पॉलिटिक्स है, आप अगर पहले देखें तो तब जो है पेरिस समझौता हुआ करता था, तब ओबामा ये कहते थे कि जब तक चीन और भारत इसमें साइन नहीं करते, इसमें कटौती नहीं करते उल्लेखनीय हिसाब से, उल्लेखीय हिसाब से, तो इस अग्रीमेंट का कोई तुक नहीं हो, कोई अर्थ नहीं होगा। अब देखिए तख्त पलट गया है, अब भारत और चीन ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका, और अमेरिका के बाद जो अब रूस की बात आ रहा है, टर्की का बात आ रहा है, ब्राजील का बात आ रहा है, ये लोग अगर इस तरह से, ये देश अगर ये अग्रीमेंट को सीरियसली नहीं लेंगे और अगर सिर्फ हमें ही कटौती करना पड़े तो कैसा होगा, ये पॉलिटिक्स जो है ये है बात।
और ये थे बीबीसी के पर्यावरण मामलों के संवाददाता नवीन सिंह खड़का। इधर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर में भीड़ की हिंसा में कल एक पुलिस अधिकारी समेत 2 लोग मारे गए हैं। राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आइए सीधे चलते हैं बुलंदशहर, जहां मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। नितिन, क्या वहां अभी भी तनाव बना हुआ है या कुछ कमी आई है कल के मुकाबले?
संदीप, तनाव जस का तस बना हुआ है और रात भर कर्फ्यू वाली हालत थी और करीब 1000 सुरक्षाकर्मी यहां पर दोपहर के बाद से प्रदेश के दूसरे जिलों से बुला लिए गए हैं, उनकी तैनाती है। 144 लगी है, प्रदेश के ADG जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, IG मेरे जोन, सब लोग यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। और हम जहाँ पर रुके हैं वो भी वो सयाना थाना, जहाँ पर सैकड़ों लोगों ने हमला किया, पुलिस की गाड़ियों के साथ आगजनी की और मारपीट की, पुलिस वालों के साथ उनकी हाथापाई मुठभेड़ हुई, उसके बहुत ज्यादा करीब है। और अभी लगता है कि तनाव खत्म होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड सा मामला है जो पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि इस इलाके में गो हत्या, कथित गो कशी के मामलों को लेकर खासा विवाद पिछले 2-3 सालों में होता रहा है, लेकिन इस तरह का मामला कि एक पुलिस अफसर की उसमें मौत हो जाए, एक और आदमी की मौत हो जाए और इस तरह से उग्र हो जाए भीड़ और हिंसा, ये मामला पहली बार हुआ है।
नितिन, ऐसी भी खबरें हैं जो कहती हैं कि जिस पुलिस अधिकारी की मौत हुई है उन्हें गोली मारी गई थी।
जी संदीप, अभी पुलिस जिन अधिकारियों से हमारी बात हुई है वो उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं और कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि जो जांच हो रही है उसमें ये पाया गया है कि शायद उनके शरीर पर एक गोली का निशान भी मौजूद था और किसी भारी ऑब्जेक्ट से भी उन पर हमला किया गया था।
नितिन श्रीवास्तव बीबीसी संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ थे। वहीं इस घटना से बिल्कुल उलट बुलंदशहर से ही एक और तस्वीर कल चर्चाओं में रही। ये तस्वीर एक मंदिर की थी जहां कुछ नमाजी नमाज अदा कर रहे थे। ये वाकया बुलंदशहर के जैनपुर गांव के शिव मंदिर का है। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने इस मंदिर के पुजारी और व्यवस्थापक कन्हैयालाल शर्मा से बात की और जानना चाहा माजरा क्या था।
जी, ये दोपहर का टाइम था, वो कुछ बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था, उस समय जाम की स्थिति थी, दोपहर की नमाज का टाइम हो गया, तो हमने वैसे भी यहाँ व्यवस्था पानी वगैरह की, हमने उन्होंने कहा कि हम नमाज अदा करेंगे, हमने कहा ठीक है, तो साफ सुथरी हमारी अच्छी जगह, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, हमने फिर उन्हें अपना पानी की व्यवस्था सारी व्यवस्था दी, शौचालय की सुविधा दी और उन्होंने बहुत आराम से नमाज अदा कर दी।
अच्छा, तो कैसा लगा आपको मंदिर में नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, क्या आपके मन में विचार चल रहा था?
हम तो ये मानते हैं कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ तो ये मंदिर पे ऑन रोड होने की वजह से हिंदू यानी सभी धर्मों के साधु संत लोग आते रहते हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, कोई वो नहीं, उन्हें सुविधा देते हैं, भोजन वगैरह की व्यवस्था देते हैं, कोई चाहे वो बहुत दो सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, हमें, और ये मुस्लिमों का था तो हमें तो कोई नहीं, भगवान तो एक ही है ना।
अच्छा, क्या किसी ने, जैसे चूंकि आजकल जैसा माहौल है, किसी ने आपकी आलोचना भी की है, किसी ने आपसे शिकायत भी की कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, ऐसी कोई बात आई है क्या?
नहीं, हमारे कोई किसी का नहीं आया, और हमारे पूरे क्षेत्र में बड़े शांति से सभी हिंदू लोग बहुत अच्छा उसे दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पानी वगैरह की व्यवस्था सब हिंदू लोगों ने कराई है, खाना पीने का अगर कोई है जो भी सुविधा जो दे सकता है दिया है, किसी ने कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं, बड़ा प्यार से, बहुत शांति से।
अच्छा कन्हैया जी, आप इस मंदिर में कितने दिन से हैं और आपकी उम्र लगभग कितनी होगी?
मेरी लगभग उम्र 42 साल है, और 42 साल ही है, और मैं मंदिर यानी संस्थापक, एक तरह से हमारी अम्मा जी के द्वारा ये बनवाया गया मंदिर, समय जमींदार हुआ करती थी गाँव के, हाँ, और मैं उनका होता हूँ।
अच्छा कन्हैया जी, मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि जैसे मंदिर में आप रहते हैं, शिव जी का मंदिर है ये, जब शिव जी के मंदिर में कुछ मुस्लिम अकीदतमंद नमाज पढ़ रहे थे और आप उनको देख रहे थे, आपके मन में क्या चल रहा था, क्या लग रहा था आपको, कैसा लग रहा था उस वक्त?
हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम भी उसी भगवान की पूजा करते हैं यार, वो भी कर रहे हैं, हमें तो कोई बिल्कुल वैसा ही लगा भाई, हम भी अपना सिर झुकाते हैं, उन्होंने भी जो सिर झुका के ही नमाज करी है, तो क्या हुआ, भगवान तो एक ही है ना।
अच्छा, जब आप जैसे आज के दौर में हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत की खबरें पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे अखबार में, टीवी पे देखते होंगे, कितना असर होता है ऐसी खबरों का आपकी सोच पे?
मैं तो ये हमारे देश का शिक्षित वर्ग जो नहीं है शिक्षित, वही इस तरीके का काम करते हैं, शिक्षित लोगों को इतना कहां के जो बेकार की बातें, तो बस यही है, हमारे यहाँ शिक्षा का अच्छा प्रसार होना चाहिए और सब लोग शिक्षित होंगे तो ये चीज नहीं होगी।
ये थे एक मंदिर के पुजारी जहां पर कल मुसलमानों ने नमाज अदा की शांतिपूर्ण तरीके से। बात पंजाब की। पंजाब की राजनीति में इन दिनों एक नाम सुर्खियों में है और वो है नवजोत सिंह सिद्धू का। सिद्धू जब पाकिस्तान के दौरे पर गए और वहां से आई उनकी तस्वीरों पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, लेकिन अब उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है। पंजाब की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में सिद्धू की टिप्पणी के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके इस्तीफे की मांग की है। हालांकि विवाद बढ़ता देख सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पिता के समान बता दिया। अमृतसर से हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह रॉबिन की रिपोर्ट सुने।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अपने विवादास्पद पाकिस्तान दौरे पर वे पहले से ही पार्टी के अंदर और बाहर विरोध को झेल रहे थे, लेकिन अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर टिप्पणी कर सिद्धू चारों तरफ से घिरे नजर आ रहे हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने सिद्धू के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिद्धू से मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग भी की है। यहां बताते चलें कि सिद्धू ने रविवार के रोज हैदराबाद में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी को अपना कैप्टन बताया और कैप्टन अमरिंदर सिंह को फौज का कैप्टन बताया था।
अरे मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं, उन्होंने तो भेजा है हर जगह। क्या बात कर रहे हो यार, कौन से कैप्टन की बात कर रहे हो यार? है ना, ओ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, वो तो आर्मी के कैप्टन है भाई, मेरा कैप्टन राहुल गांधी साहब है।
उसके बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सिद्धू द्वारा की गई इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पंजाब के मंत्री साधु सिंह का कहना था,
एक राहुल गांधी जी ने, हाईकमान जी ने कैप्टन साहब को मुख्यमंत्री बनाया है, और इस तरह की बातें करना, बगावत की बात करना, और जिस लहजे से उन्होंने कहा कैसा कैप्टन, कौन कैप्टन, वो तो मिलिट्री का कैप्टन है, मुझे लगता कि सिद्धू साहब भूल गए, शायद कपल शो में नहीं है, अब कपल शो में नहीं बोल रहे, अब देश चलाने की बात करनी चाहिए।
हालांकि सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू अपने पति के बचाव में आगे आई तो हैं, पर उनके बयानों से कांग्रेसियों का गुस्सा ठंडा पड़ता दिखाई नहीं दे रहा।
तुसी पूरा बयान चला दो, सारे नु समझ आजू, जिथे उन्हें क्या मेरा प्यो, मैं उन्हें प्यो मानदा, बाप तो उत्ते की हो जांदा है, मेरा पिता समान है, मेरा मैं उन्हें अपने बाप दा दर्जा दिना है, मैनू लगदा नहीं इस तो ज्यादा इज्जत किसी बंदे दी कोई दे सकदा है कि उन्हें पिता नाल ही तोलता, उन्हें मन्निया इन्ने साल च, उन्हें उदी हर गल मन्नी।
नवजोत सिंह सिद्धू पिछले दिनों कैप्टन अमरिंदर सिंह के मना करने के बाद भी पाकिस्तान में हुए करतारपुर साहिब कॉरिडोर के खुलने संबंधी समागम में भाग लेने पाकिस्तान गए थे। नवजोत ने पहले एक बयान में कहा था कि वे जहां भी जाते हैं नेशनल प्रेसिडेंट राहुल गांधी की इजाजत से जाते हैं। बाद में उन्होंने यह कह दिया कि वे राहुल गांधी ने उन्हें करतारपुर साहिब पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कहा था। नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान फेरी के दौरान छपी कुछ तस्वीरें भी विवादों के घेरे में आ गई हैं। रिपोर्ट है कि दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई गई है, जिसमें शिकायत है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने पाकिस्तान फेरी के दौरान कई संदिग्ध खालिस्तानियों से मिले थे। कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। हालांकि आज एक बयान में सिद्धू का कहना था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके पिता समान हैं और वे इस मसले को अपने आप सुलझा लेंगे। फिलहाल सिद्धू को पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से आलोचना का पात्र बनना पड़ रहा है। BBC हिंदी के लिए अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन।
और जानते हैं अब दिल्ली से छपने वाले आज के अखबार क्या सुर्खियां बयां कर रहे हैं। तमाम अखबारों के साथ भूमिका स्टूडियो में है।
जी संदीप, कल की सबसे बड़ी घटना थी बुलंदशहर में हुई हिंसा, और इस खबर को दिल्ली से छपने वाले लगभग हर अखबार ने लीड खबर के तौर पर प्रकाशित किया है। बुलंदशहर में हुई इस हिंसा में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें से एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। अलग अलग अखबारों ने अपने अपने तरीके से इस खबर को छापा है। मसलन हिंदुस्तान ने हेडिंग दी है कि बुलंदशहर में गोकशी पर हिंसा, कोतवाल की मौत। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है गोकशी के आरोप में भीड़ ने पुलिस वाले को मार डाला। द हिंदू ने हेडिंग दी है कि भीड़ के हमले में इंस्पेक्टर और एक युवक की मौत। और वहीं अगर दैनिक भास्कर की हेडिंग की बात करें तो दैनिक भास्कर लिखता है गो हत्या की अफवाह से भड़की भीड़, रोकने आए इंस्पेक्टर के सिर में गोली मारकर हत्या। तो ये कल की सबसे बड़ी खबर थी और इसे आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर लिया है। इस खबर के अलावा संदीप, अगर दूसरी खबरों की बात करें तो दैनिक हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर ही दिल्ली में आश्रय गृह से 9 लड़कियों के गायब होने की खबर को प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित संस्कार आश्रम से बीते शनिवार और रविवार की रात से 9 लड़कियां लापता हैं, और दिल्ली सरकार ने भी इसमें उचित कार्रवाई करते हुए कुछ अधिकारियों को निलंबित किया है और मनीष सिसोदिया खुद इस मामले को देख रहे हैं। साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में CBI ने चार्जशीट दाखिल की है। इस खबर को भी दैनिक हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है। अगर बात करें इंडियन एक्सप्रेस की तो ये इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव खबर है। इंडियन एक्सप्रेस और ICIJ की एक पड़ताल में पता चला है कि जो डायग्नोस्टिक लैब्स होते हैं वहाँ पे यूज्ड मशीन्स यानी पहले से इस्तेमाल हुई मशीनों का को लाया जाता है। तो ये एक अपने आप में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की एक खबर है। और दैनिक जागरण ने ट्रेन 18 जो कि देश की अब तक की सबसे हाई स्पीड ट्रेन है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका ट्रायल हुआ है। अखबार लिखता है कि इसे आने वाली 25 दिसंबर को लॉन्च किया जा सकता है। पहले इसे शताब्दी के तौर पे चलाया जाने वाला था भोपाल दिल्ली के बीच में, लेकिन अभी ये दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, तो उन्हें समर्पित करते हुए इस ट्रेन को चलाए जाने का विचार किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है कि NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शहर की जहरीली हवा पर नियंत्रण नहीं रख पाने के चलते दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये आज के अखबारों की सबसे प्रमुख सुर्खियां थी।
भूमिका राय बता रही थी, दिल्ली से छपे अखबार आज क्या सुर्खियां बयां कर रहे थे। आज 4 दिसंबर है। 1 साल पहले आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता शशि कपूर का देहांत हुआ था। 70 और 80 के दशक में उन्हें बड़े पर्दे पर रोमांस का पर्याय माना जाता था। शशि कपूर की पहली पुण्यतिथि पर हम आपके लिए BBC के खजाने से वर्षों पुराना एक साक्षात्कार निकाल कर लाए हैं। लंदन स्टूडियो में शशि कपूर का ये साक्षात्कार किया था BBC के पूर्व प्रसारक कैलाश बुधवार ने। सुनिए उसके कुछ अंश।
शशि भाई, आपका इरादा शुरू से फिल्मों में आने का था या आप बचपन में कुछ और करने के इरादे बांध रहे थे?
फिल्मों में आने का इरादा तो नहीं था, लेकिन एक्टर कलाकार बनने का इरादा तो बचपन से ही था। क्योंकि 46 में जब मैं कुछ 8 साल का था, तब पृथ्वी थिएटर्स में मैंने एक छोटा सा रोल किया था शकुंतला में
जी।
तो तब से ही ये शौक, ये लगन साथ में थी, और तब से ही मैंने इरादा तो कह नहीं सकता, आई मीन तब से यानी कि बहुत एक किस्म का एम्बिशन बना लिया था, एक किस्म का एक गोल बना लिया था कि मैं बड़ा होकर पापा जी के जैसे एक्टर बनूंगा। और बचपन में स्कूल में तो खैर हम लोगों को मौका नहीं मिला, घर पे हमारे टेरेस पे हम लोग नाटक किया करते थे।
बाकी सामान तो जुटा लेते होंगे, दर्शक कहाँ से लाते होंगे?
अजी बहुत थे, क्या है कि गली में जितने बच्चे थे वो तो सभी आते थे।
ये शशि भाई, यहाँ विदेशों में कलाकार रंगमंच पर भी काम करते हैं, टेलीविजन में भी और फिल्मों में भी। अपने यहाँ तो दुर्भाग्य से प्रथा नहीं है, क्योंकि रंगमंच और फिल्में बिल्कुल अलग बात मानी जाती हैं। आपने उस समय ये सोचा था कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि हिंदुस्तान में फिल्म के कलाकार रंगमंच पर और रंगमंच के कलाकार फिल्मों में हिस्सा लेंगे?
खैर उस वक्त ये हो तो रहा था, क्योंकि बाबा जी फिल्म के कलाकार थे और बाबा जी ने पृथ्वी थिएटर्स शुरू किया था उस वक्त, तो ये तो बात पक्की थी कि फिल्म स्टार्स स्टेज पे काम कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त ये नहीं मालूम था कि स्टेज पे काम करने वाले फिल्म स्टार्स बन सकते हैं या बनेंगे, क्योंकि राज जी विराज भैया श्री राज कपूर साहब वो एक मामूली कलाकार थे पृथ्वी थिएटर्स में और एक एएसएम के तौर से स्टेज पे काम करते थे। और उस वक्त किसे भी नहीं यानी कि मालूम था कि राज जी इतने बड़े कलाकार बन जाएंगे, इतने बड़े यानी कि निर्देशक। और
शशि भाई, फिल्मी जीवन में आने के बाद आपको कभी इस बात का अफसोस हुआ कि आपने ये जीवन क्यों अपनाया? ये यहां
काश कि मैं कहीं बस कंडक्टर होता या क्लर्क होता या बिजनेसमैन होता।
नहीं, आप
नहीं, नहीं, मैं जिसे कहते हैं सूफी सदी एक्टर हूँ और एक्टर रहूँगा, चाहे छोटा एक्टर हूँ या बड़ा एक्टर हूँ। लेकिन मुझे इस बात का फक्र है कि मैं एक्टर हूँ, और कभी भी ये दिल में नहीं आया मेरे कि काश कि मैं आर्मी में होता या पुलिस में होता या क्रिकेट प्लेयर होता, ये कभी मन में नहीं आया।
शशि भाई, हिंदुस्तानी फिल्म व्यवसाय दुनिया के सबसे पुराने फिल्म उद्योगों में से है और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से है, पर लोग कहते हैं कि वो घटिया व्यावसायिक फिल्मों के जाल में फंसा हुआ है, उससे वो क्यों नहीं निकल पा रहा है आपकी राय में?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इतना यानी कि आप घटिया नहीं कह सकते हिंदुस्तानी फिल्मों को। देखिए ना, आप मैंने यहाँ काफ़ी फिल्में देखी हैं, अमेरिकन, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, उनमें से कुछ फिल्में अच्छी थीं और बहुत सी फिल्में ख़राब थीं। ये अब एक किस्म का फैशन हो गया है हिंदुस्तान में कि लोग उठ के कहें कि साहब हम तो हिंदुस्तानी पिक्चर नहीं देखते, क्योंकि हिंदुस्तानी पिक्चर बड़ी घटिया हैं, बहुत ख़राब हैं, क्योंकि हर पिक्चर में गाने होते हैं, हर पिक्चर में हीरो डांस करता है, हर पिक्चर में हीरो राम की जैसे ट्रायम्फेंट होता है। हमारी हिंदुस्तानी फिल्में बहुत अलग किस्म की फिल्में हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग ओल्ड फैशन हैं, हमारे यहाँ सेंसर है, हमारे यहाँ किसिंग नहीं अलाउड है और इत्यादि इत्यादि चीज़ें, अभी सेक्स वेक्स नहीं है, तो सेक्स की बजाय हमारे यहाँ गाने आ गए हैं, जहाँ किसिंग है उसकी बजाय कुछ डबल मीनिंग डायलॉग्स आ जाते हैं, जो कि यहाँ था पहले विक्टोरियन ज़माने में ये होता था। तो ये नहीं आप कह सकते कि हमारी फिल्में घटिया हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी फिल्में और अच्छी बन सकती हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जबकि हमारे ऑडियंसेस भी अच्छी पिक्चरें देखने के लिए तैयार हों। फिलहाल वो चाहते हैं कि साहब जो हीरो है वो हमेशा पॉजिटिव हो, हमेशा अच्छा हो, हमेशा एंड में रावण को मारे।
ये फिल्मों का माध्यम बड़ा सशक्त है, बड़ा पावरफुल है ये मीडियम, तो क्या हमारी फिल्मों में कोई ऐसा संदेश होना चाहिए कि राम की उसमें जीत हो या जैसी जनता चाहती
नहीं
है कि...
हर पिक्चर में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर पिक्चर में संदेश होने से ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी पिक्चर बनेगी। पिक्चर को एंटरटेन करना चाहिए, चाहे वो संदेश वाली पिक्चर हो, चाहे वो गप्पी पिक्चर हो, चाहे वो सेक्स वाली पिक्चर हो, चाहे वो हिस्टोरिकल पिक्चर हो, एंटरटेन करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि पिक्चर में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होनी चाहिए जो कि जाके आम ऑडियंस के दिल में लगे, जिससे आम ऑडियंस अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके और कह सके कि हाँ साहब ये मेरा प्रॉब्लम है। और मेरे हिसाब से अभी तक वही पिक्चरें यूनिवर्सली चली हैं, बहुत सक्सेसफुल हुई हैं, जिन पिक्चरों में एक एक यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन थी।
दिवंगत अभिनेता शशि कपूर से वर्षों पुराने इस साक्षात्कार के बाद अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का।
बीबीसी समाचार। फ्रांस में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति जॉर्ज एच वॉकर बुश का पार्थिव शरीर वॉशिंगटन लाया गया है, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। अफगानिस्तान के एक शीर्ष खेल अधिकारी ने पहली बार देश की महिला खिलाड़ियों के साथ यौन दुर्व्यवहार होने की बात स्वीकार की है। नॉर्वे की फुटबॉल खिलाड़ी अदा हैगरबर्ग को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर चुना गया है। 6 घंटे की यात्रा के बाद रूस का सोयाज रॉकेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है।